आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
कल्चरल डाइवर्सिटी सप्ताह में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं सईदा एमन जाफरी से। सईदा एमन जाफरी लखनऊ से आती हैं, अपने परिवार की सबसे बड़ी बच्ची हैं। सबसे पहले बच्चे होने का जितना प्यार उन्हें मिला है, उतनी ही जिम्मेदारियां भी उनके हिस्से आई हैं। फिलहाल तस्मानिया में हैं और वहां पर प्रवासी समुदायों को बसने में सहायता करती हैं, उनकी वकालत करती हैं। यही नहीं, एमन वहाँ की मल्टीकल्चरल कमेटी की अध्यक्ष भी हैं। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पर उनसे चर्चा होगी और किस तरह से ये सांस्कृतिक विविधता उन्हें ऑस्ट्रेलिया में मदद करती है और किस तरह से वे ऑस्ट्रेलिया में इसे बढ़ते हुए देख रही हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। तो एमन, आपका बहुत स्वागत है SBS हिंदी में।
थैंक यू सो मच वैशाली, आप कैसी हैं?
मैं बढ़िया हूँ एमन। और सबसे पहले तो हमें ये बताइए, ये इतने बड़े परिवार की अकेली सबसे पहली बच्ची होने की जो जिम्मेदारी रही वो कैसी रही और वहाँ से तस्मानिया तक का सफर कैसा रहा?
बड़ी सख्त थी वो, क्योंकि बड़े बच्चे होने के नाते सारी रुकावटें, सारी बंदिशें, सारी एक्सपेक्टेशंस, सब आप बिल्कुल एक एक्सपेरिमेंट होते हो पूरे खानदान के लिए, तो बिल्कुल वो रहा। लेकिन जब छोटे थे तो बहुत गुस्सा आता था, बुरा भी लगता था, बहुत लड़ाइयाँ भी होती थी पेरेंट्स के साथ भी, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है। तो लेकिन अब एहसास होता है कि शायद वो उनकी मोहब्बत थी हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो हमें उस वक्त ज्यादतियाँ लगती थी वो हम अब खुद, क्योंकि अब पेरेंट्स बन गए तो हमें लगता है कि नहीं, उन्होंने सही किया था। लेकिन जो भी है, आज वो उसी परिवार की वजह से हैं, तो उनको ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते अब।
आपकी बात सुनकर के ना मुझे नील गेमन की एक बड़ी खूबसूरत बात याद आई कि देयर इज एन एक्सपायरी डेट टू ब्लेम योर पेरेंट्स।
बिल्कुल, आई थिंक आप जिस दिन ये रियलाइज कर लेते हैं ना कि पेरेंट्स भी इंसान हैं और उनसे भी गलतियां हो सकती हैं, आई थिंक वो दिन होता है जब आप उस आप बड़े हो जाते हैं, आप उस चीज से निकल जाते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ, हमारे साथ नाजायज हुआ।
तो एमन, एक प्रोटेक्टेड, एकदम यू नो सुरक्षित एनवायरनमेंट से निकल के, परिवेश से निकल के, और फिर मल्टीकल्चरल एडवोकेसी जो बिल्कुल आउटस्पोकन फील्ड है, आगे बढ़कर आपको सब तरीके के लोगों से बात करनी होगी, ये कैसे हुआ?
देखिए, मैं क्योंकि एक तो बड़े होने के नाते अपने खानदान में, और मैं अपने खानदान की पहली लड़की थी, तो एक मेरी फैमिली क्योंकि इंडिया से माइग्रेट हुई है, तो हम लोग बड़े इंडियन कल्चर से हैवीली इन्फ्लुएंस्ड है। हमेशा अपने राइट के लिए फाइट किया है मैंने, चाहे मुझे वॉलीबॉल खेलने का बहुत शौक था, और हमेशा ये हुआ कि जी लड़कियां नहीं इस किस्म के गेम्स खेलती हैं, तो हमेशा अपने राइट के लिए फाइट किया। कहीं बाहर जाके, मुल्क से बाहर जाके पढ़ाई करनी हो तो उसके लिए मसला था। मुझे पुलिस में जाने का बहुत शौक था, तो वो भी एक बड़ा बैरियर था कि भाई अगर पुलिस में चली जाएगी तो उसकी शादी कैसे होगी। तो एडवोकेसी तो मैं बचपन से शायद अपने लिए पहले कर रही थी, लेकिन जब आज से कोई तकरीबन 6.5-7 साल पहले जब मैं ऑस्ट्रेलिया आई हूँ, और मैं अबू धाबी से माइग्रेट करके आई हूँ, पाकिस्तान से नहीं, तो यहाँ पर मैंने देखा कि एक तो गार्ड वुमेन की इतनी कुछ खास मुझे रिप्रेजेंटेशन नजर नहीं आई कि आपको कोई इंडिया से या पाकिस्तान से या मिडल ईस्ट से या सब कॉन्टिनेंट की कोई आपको माइग्रेंट औरतें ज्यादा इनकी स्पेस में नजर आई, क्योंकि तस्मानिया जो है वो अभी भी बहुत ही लीस्ट डाइवर्स स्टेट है ऑस्ट्रेलिया की। मुझे मतलब काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आई एक अपनी जगह बनाने में, क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ तो मैं हिजाब भी करती हूँ, तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि अच्छा बैरियर्स हैं, बहुत सारी लेयर्स थी उसकी। मुझे इस चीज का अंदाजा हुआ कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं एडवोकेट कर सकती हूँ माइग्रेंट्स के लिए कि उनको क्या जरूरतें होती हैं या उनकी जो माइग्रेशन की जर्नी होती है उसमें क्या उनको दिक्कतें पेश आती हैं।
जी, तो एमन इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, इस समय आप महिलाओं के लिए समाज में किस तरीके की चुनौतियां देख रही हैं जो उनको ऑस्ट्रेलिया की, खासकर जिसे कहेंगे राजनीति में आने के लिए रोकती हैं?
देखिए, सबसे बड़ा जो बैरियर, मैं अपने ओपिनियन में कह रही हूँ, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम रहा है वो एक कल्चर बैरियर रहा है, एक जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का इशू रहा है कि अगर आप एक औरत हैं तो आपने एक सर्टन तरह के आपने काम करने हैं, या अगर आप जो है वो हाउस वाइफ हैं तो आपने मतलब सर्टन तरह के काम करने, आप बाहर नहीं आ सकते. वो एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज मुझे फेस आया. मेरी मतलब मेरे हस्बैंड जो हैं वो एक मैं कहते हैं माकूल इंसान है, पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, लेकिन कभी कभी उनको भी मैं एटीट्यूड में थोड़ा चेंज महसूस करती थी. तो हमने कन्वर्सेशन की, हमने बातचीत की कि आखिर मसला क्या होता है. तो आसपास के लोगों को ये जो हमारी बात है कि हमारे कल्चर का ये बहुत बड़ा शिफ्ट आना जरूरी है कि एक औरत भी बाहर निकल के काम कर सकती है. और स्पेशली पब्लिक लाइफ में तो वो और ज्यादा स्क्रूटनाइज हो जाती हैं चीजें कि अच्छा आप बाहर हैं, घर से निकल रहे हैं, तो आपके घर के काम कौन कर रहा है, क्योंकि आप एक महिला हैं तो आपने ही घर के काम करने हैं. तो ये बहुत सारी चीजें जो है वो चैलेंज होती हैं. फिर दूसरा ये कि स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में मैंने कार्ड औरतों की इतनी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देखी नहीं है, तो लोग क्या इंस्पिरेशन किससे लेंगे, आपका रोल मॉडल कौन होगा यहाँ पे. तो उनसे भी जो है उन चीजों से भी काफी फर्क पड़ता है. एक आपकी इतनी कोई मेंटोरिंग नहीं हो रही होती है खवातीन की, क्योंकि जाहिर बात है उनको घर पे इतनी सपोर्ट नहीं है. जब आप एक नए मुल्क में आते हैं तो आपके जो है जाहिर बात है आपने अपने घर को भी देखना है, आपने छोटे अगर आपके बच्चे हैं आपने उनको भी देखना है. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको बाहर निकल के काम करने से रोकती हैं.
जी, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया चुनाव की तैयारी कर रहा है मन, और इस समय जो भी सरकार आती है उससे आपको क्या उम्मीद रहेगी कि वे खासकर कॉल्ड महिलाओं के लिए, जो विविध परिवेश से महिलाएं आ रही हैं उनके लिए ऐसी क्या चीजें प्रस्तुत करे जिससे ये जो सफर है जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं आसान हो सके.
देखिए मैं इसको ना दो तरीके से देखती हूँ. एक तो पहली बात ये कि हमें अपनी कम्युनिटीज में जो है ना ये बदलाव लाने की जरूरत है कि एक पढ़ी लिखी औरत जो है वो आने वाली नस्ल की परवरिश करती है, एक आने वाली नस्ल को रेडी कर रही होती है. तो अगर वो औरत खुद कॉन्फिडेंट नहीं होगी तो वो अपने आने वाली जनरेशंस को भी रेडी नहीं कर सकेगी हालात को फेस करने के लिए. तो ये दिस इज वट वी हैव टू वर्क विद इन आर कम्युनिटीज. बहुत जरूरी है हम अपने बेटों की, क्योंकि अब रहता हम खुद अब हमारे बच्चे हैं, तो हम अपने बेटों की ये अपब्रिंगिंग ऐसी करें कि नहीं औरत इज रिस्पेक्टेबल, वो बाहर निकलेगी, वो काम करेगी. एक एक जनरेशन हमने शिफ्ट लेके आना है. एज फार एज गवर्नमेंट का जो है कंसर्न है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, स्कॉलरशिप्स होनी चाहिए, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस होनी चाहिए. मैं खुद कभी कभी सोचती हूँ कि कुछ मैं प्रोग्राम जाके अटेंड करना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ, लेकिन जाहिर बात है वो इतने महंगे हैं कि मैं नहीं अटेंड कर पाती. तो बहुत जरूरी है वो एक फाइनेंशियल सपोर्ट हो. एक मतलब टोकनिज्म नहीं होना चाहिए कि आपने अच्छा आप एक ने आपने कार्ड बैकग्राउंड की आप एक जो है महिला ले आए हैं बस हमारा काम पूरा हो गया. नहीं, आपने इंटेंशनली जो है वो कोशिश करनी है कि आप कार्ड महिलाओं को आगे लेके आए ताकि वो एक डिफरेंस क्रिएट कर सके, एक नया पर्सपेक्टिव लेके आ सके.
जी, और एमन ऑस्ट्रेलियन मल्टीकल्चरल काउंसिल पर काम करते हुए एक चुनौती और एक सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है?
देखिए मैं तो अभी मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है ऑस्ट्रेलियन मल्टीकल्चरल काउंसिल में, और मुझे लगता है कि ये एक वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए एज अ कार्ड वुमन के मुझे ये मौका मिला है कि मैं आके जो मेरी टैस्मेनियन कम्युनिटीज हैं उनकी उनके कंसर्न उनके जो भी इश्यूज हैं उनको एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे हाईलाइट कर सकूं. और ये हाईलाइट भी कर रहे हैं कि दिस इज द नीड ऑफ द डे, दैट यू नीड रिप्रेजेंटेशन, आपको वुमेन रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है, क्योंकि जो पर्सपेक्टिव वहां से आएगा वो और कहीं से नहीं आ सकता. ठीक है, और चैलेंज भी मेरे लिए यही रहेगा कि एक माइग्रेंट एक कार्ड ऑनर होने के नाते जो है मैं हाउ कैन आई प्रूव माई सेल्फ. ठीक है, मैं इस चीज पे बड़ी सोच रही हूँ बहुत दिनों से कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है. थोड़ी सी जरा है एंग्जाइटी, लेकिन हो जाएगी ओवरकम, बिकॉज आई एम रियली ग्रेटफुल कि आई हैव अ वेरी सपोर्टिव फैमिली जो कि समझते हैं कि मैं जो भी काम अपनी कम्युनिटीज के लिए करती हूँ आई डू इट आउट ऑफ पैशन. मुझे कोई इससे मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, बस वो कहते हैं ना कभी कभी आपको सन की होना पड़ता है कुछ काम करने के लिए.
बिल्कुल,
तो बिल्कुल, तो वो हमारी फैमिली, मेरी तो फैमिली कहती है कि भाई ये जो करेगी इसको जिंदा रखने के लिए हमने ये काम करने.
तो ये मुझे लगता है कि पैशनेट जुनूनी औरतों के घर वाले ये बहुत जल्दी समझ जाते हैं जब सपोर्टिव एनवायरनमेंट होता है कि इनको जिंदा रखने के लिए इनको इनका काम करने देना बहुत आवश्यक है.
बिल्कुल बिल्कुल, मेरे बच्चे कहते हैं कि हैप्पी मम्मी हेल्दी मम्मी इज हैप्पी होम. ठीक है,
कितनी खूबसूरत सीख है ये. और इवन इसी बात पर, इसी खूबसूरत सी बात पर आज की बात को विराम देते हैं. इवन आपने इतना समय निकाला उसके लिए बहुत शुक्रिया.
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।